पेज नंबर 157 अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य की सामग्री। अपभ्रंश साहित्य की सामग्री का पहला संग्रह मटेरियलियन असुर कैंटनिस डेस अपभ्रंश, जिसे आज से लगभग 50 साल पहले 1902 ईशून्य में जर्मन विद्वान पेशेल ने अपभ्रंश के अध्ययन की सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया था। इस सामग्री को पेशेल ने अपने ग्रामेटिक डेर प्राकृत शप्राखेन का परिशिष्ट कहा था। इसमें हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण के सभी अपभ्रंश छंदों के अतिरिक्त 35 पद्य और हैं। उन 35 पद्यों में से पहला चंद के प्राकृत व्याकरण में उद्धृत ये दोहा है, कालू लहेविनु जोया जिव जिव मोहु गलेई तिव तिव दंसनु लहई जो नियमे अपमुने। दूसरा दोहा ध्वन्यालोक में इस प्रकार उद्धृत है, महु महु अति भंत हो वजई काल जनसु तो वी अना देव जनदनो गोरे होई मनसु। इसके बाद क्रमशः सरस्वती कंथाभरण के 18 और विक्रमोर्वशीय के 15 छंद और हैं। पूरी सामग्री व्याकरणिक टिप्पणी तथा किंचित व्याख्या के साथ प्रस्तुत की गई है। विचार करने से इस संग्रह में ऐसे पद्य भी मिल सकते हैं, विशेषत सरस्वती कंथाभरण के, जिनकी भाषा अपभ्रंश न हो, फिर भी इस संग्रह का ऐतिहासिक महत्व है। भारतीय और यूरोपीय विद्वानों का ध्यान अपभ्रंश की ओर आकृष्ट करने वाला ये पहला अपभ्रंश संग्रह है। इसने अपभ्रंश साहित्य के शोध के लिए विद्वानों को प्रेरित किया। इस दिशा में जर्मनी के ही दूसरे विद्वान याकोवी ने दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया। ये है धनपाल की भविष्यत कहा का संपादन 1918 ईशून्य। अपभ्रंश का ये पहला प्रबंध काव्य है जिसने विद्वानों के सामने अपभ्रंश साहित्य के सौंदर्य और गौरव की स्थापना की। पूर्ववर्ती बिखरी सामग्रियों की राशि पर भविष्यत कहा का प्रकाशन सुमेरु शिखर के समान प्रतीत हुआ। आगे चलकर श्री चमनलाल दायाभाई दलाल ने इस ग्रंथ की अन्य पांडुलिपियों को ढूंढकर एक दूसरे संस्करण में संपादन का कार्य आरंभ किया, जिसे उनके असमय देहावसान के बाद डॉक्टर शून्य पांडुरंग गुणे ने 1923 ईशून्य में संपन्न किया। श्री दलाल ने भविष्यत कहा के संपादन के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वह है पाटन पुस्तक भंडार में पड़े हुए अनेक अपभ्रंश ग्रंथों का परिचय प्रकाशित करना। उन्होंने बड़ौदा के लाइब्रेरी मिसेलेनी में पटनना भंडारो अनेखास करीने तेमा रहेलो अपभ्रंश तथा प्राचीन गुजराती साहित्य शीर्षक विस्तृत पेज नंबर 160 निबंध के द्वारा संदेश रास्क वज्रस्वामी रास्क अंतरंग संधि सुर्ग संधि सुलसाख्यान चच्चरी भावनासार परमात्म प्रकाश आराधना मैनरेहा संधि नमया सुंदर संधि भविष्यत कहा पौमसिरी चरयु इत्यादि 75-80 अपभ्रंश ग्रंथों का परिचय दिया। पश्चात जैन पुस्तक भंडारों तथा अन्य संग्रहों में अपभ्रंश साहित्य की सामग्री का खोज कार्य शुरू हुआ। इस दिशा में श्री दलाल के बाद श्री जिन विजय मुनि का कार्य विशेष महत्वपूर्ण है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्राकृत नाम से घोषित पुष्पदंत के महापुराण तथा स्वयंभू के पौमचर्यु और हरिवंश पुराण के उद्धार का श्रेय मुनि जी को ही है। मुनि जी ने अपभ्रंश पुस्तकों की खोज के अतिरिक्त उनके संपादन और प्रकाशन में भी बहुत बड़ा काम किया है। दूसरी ओर प्रो शून्य हीरालाल जैन ने कौंजा जैन भंडार की छान बान करके जासर चरयू नायकुमार चरयू करकंज चरयू पाहुड़ दोहा सावय धम्म दोह आदि अपभ्रंश काव्यों को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इन विद्वानों के शोध कार्य के अतिरिक्त प्राप्त सामग्री के संपादन में डॉक्टर शून्य परशुराम लक्ष्मण वैद्य और डॉक्टर शून्य आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय ने महत्वपूर्ण काम किया है। पश्चिमी अपभ्रंश साहित्य की सामग्री के अतिरिक्त पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों की अपभ्रंश रचनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने वालों में म० हरप्रसाद शास्त्री का नाम अग्रणी है। बौद्ध गान ओ दोहा 1916 इस तरह का पहला संग्रह ग्रंथ है। पीछे महापंडित राहुल सांकृत्यान ने इस दिशा में महत्वपूर्ण खोज का काम किया। पूर्वी अपभ्रंश साहित्य के संपादन में डॉक्टर शून्य शहीदुल्ला और डॉक्टर शून्य प्रबोधचंद्र बागची का नाम उल्लेखनीय है। अब तक अपभ्रंश की प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री इस मात्रा में ज्ञात हो चुकी है कि किसी भी बात में अपभ्रंश साहित्य को सामान्य और महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। यहाँ अपभ्रंश साहित्य की ज्ञात पुस्तकों की सूची अकारादिक्रम से दी जा रही है। 1. अंजना सुंदरी कथा 2. अनंत व्रत कथानक 3. अनाथ संधि 4. अंतरंग 5. अंतरंग विवाह 6. अंतरंग संधि 7. अमरसेन चरित्र 8. आत्मसंबोधन कुलक जिनप्रभ सूरी रत्नप्रभ सूरी सं 1362 माणिकराज जिनप्रभ सूरी पेज नंबर 161 आदिनाथ फाग 10 आदिपुराण मेधेश्वर चरित 11 आराधनासार 12 उपदेशक कुलक 13 ऋषभ जिन स्तुति कथाकोश 14 तारांकन 15 करकंद चर्यु 16 करकंद चरित तारांकन 17 कलास्वरूप कुलक तारांकन 18 कालिकाचार्य कथा तारांकन 19 कुमारपाल प्रतिबोध तारांकन 20 कुबलमला कहा 21 चंद्रप्रभ चरयु 22 चंद्रप्रभ चरित तारांकन 23 चरचरी 24 चरचरी 25 चरचरी 26 चैत्य परिपाटी 27 जम्बू चरित्र 28 जम्बूस्वामी चरित्र 29 जम्बूस्वामी चरित्र 30 जम्बूस्वामी रासा 31 जयकुमार चरित्र 32 जयकुमार चरित्र 33 जयतिहुर 34 जिंजन मह 35 जिंदत चरित्र 36 जिन महिमा पुष्पदंत सिंहसेन रैधु वीर देवसुरी श्रीचंद्र 941-996 कनकामा मुनि अपभ्रंश साहित्य 161 रैधु जिंदत सूरी अथी हेव जम्बू अंशत अपभ्रंश ब्राउन द्वारा संपादित सोमप्रभ सूरी 1241 अंशत अपभ्रंश उद्योतन सूरी सं 1835 अंशत अपभ्रंश यश कीर्ति दामोदर जिंदत सूरी सोलन जिनप्रभ सूरी सं 1299 वीर सागर दत्त सं 1060 धर्मसूरी 1266 ब्रह्मदेवसेन रैधु अभयदेव सूरी 1119 जिनप्रभ सूरी रैधु जिनप्रभ सूरी पेज नंबर 162-37 जिनरत्ती कथा नरसेन 38 जीवानुशास्ती संधि नरसेन तारांकन 39 त्रिषष्ठी महापुरुष गुणालंकार महापुराण पुष्पदंत 40 दंगद 41 दशलक्षण जयमाला 42 दानादि कुलक तारांकन 43 दोहाकोश 44 दोहानुप्रेक्षा तारांकन 45 दोहाकोश तारांकन 46 दोहा पाहुड 47 दोहा मातृका 48 धर्मसूरी स्तुति 49 धर्माधर्म कुलक धर्माधर्म विचार 50 5-1 नवकार फल कुलक तारांकन 52 नागकुमार चरयु 53 नागकुमार चरित 54 निर्दोष सप्तमी कथा 55 नेमिनाथ जन्माभिषेक तारांकन 56 नेमिनाथ चुपई तारांकन 57 नेमिनाथ चरयु 58 नेमिनाथ चरित 59 नेमिनाथ चरित तारांकन 60 नेमिनाथ फाग तारांकन 61 नेमिनाथ रास तारांकन 62 पद्मचरित्र पौमचरयु तारांकन 63 पद्मश्री चरित्र 64 पद्म पुराण तारांकन 65 परमात्मा प्रकाश 66 पांडव पुराण सिंहसेन रैधु प्रद्युन सरह लक्ष्मीचंद्र कान्ह राम सिंह जिनप्रभ सूरी पुष्पदंत मानिका राज जिनप्रभ सूर विनयचंद्र सूरी 1257 वी शून्य हरिभद्र सूरी 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच किसी समय दामोदर लक्ष्मण देव राजशेखर सूरी 1371 वी शून्य जिनप्रभ सूरी स्वयंभू और त्रिभुवन धाहिल 1191 वी शून्य रैधु योगींद्र यश कीर्ति पेज नंबर 163-67 पार्श्वनाथ चरित्र 68 पार्श्वनाथ जन्माभिषेक 69 पार्श्वनाथ पुराण 70 पार्श्वनाथ पुराण 71 पुराण सार 72 प्रत्येक बुद्ध चरित्र 73 प्रद्युन चरित्र तारांकन 74 प्रबंध चिंतामणि अंशत अपभ्रंश 75 वृद्ध नवकार 76 बलभद्र चरित 77 12 खड़ी दोहा तारांकन 78 बाहुवली रास तारांकन 79 भविष्यत कहा 80 भव्य कुटुंब 81 भव्य चरित्र 82 भावनाकुलक तारांकन 83 भावना संधि 84 भावनासार 85 मदन रेखा चरित 86 मलयसूरी स्तुति 87 मल्लिनाथ चरित 88 महावीर चरित्र 89 महावीर चरित 90 महावीर स्तोत्र 91 मुक्तावली विधान कथा 92 मुनिचंद्र सूर स्तुति 93 मुनि सुब्रत स्वामी स्तोत्र 94 मृगपुत्र महर्षि चरित 95 मेघेश्वर चरित 96 मोहराज विजय प्रति विनयचंद्र सूरी जिनप्रभ सूरी रैधु पद्म कीर्ति श्रीचंद्र मुनि पेज नंबर 163 रैधु मेरुतुंग 131 वी शून्य जिनवल्लभ सूरी रैधु महाचंद शालिभद्र सूरी धनपाल जिनप्रभ सूरी जिनप्रभ सूरी जिनप्रभ सूरी जयदेव 1606 वी शून्य सम शून्य 1297 वी शून्य जिनप्रभ सूरी जिनेश्वर सूरी का कोई शिष्य देवसूर जिनप्रभ सूरी मृगपुत्र संधि रैधु जिनप्रभ सूरी पेज नंबर 164-97 यशोधर चरित्र जस पुष्पदंत चरियु 98 युगादिजिम चरित्र कुलक जिनप्रभ सूरी तारांकन 99 योगसार योगिंदु 100 योगसार 101 रोहिणी विधान कथा 102 लच्छु अजित शांतित्व 103 वज्रस्वामी चरित्र 104 वज्रस्वामी चरित्र 105 वर्धमान काव्य 106 वर्धमान चरित्र 107 वराग चरित्र 108 विलासवती कथा 109 विवेक कुलक 110 वीरजिन पारणक 111 शांतिनाथ चरित तारांकन 112 शालिभद्रकक का 113 शालिभद्र मात्रे का 114 शीलसंधि तारांकन 115 श्रावक धर्म दोहा 116 श्रावक विधि 117 श्रावकाचार 118 श्रीपाल चरित्र 119 श्रीपाल चरित्र 120 षटकर्मोपदेश 121 संयम मंजरी तारांकन 122 संघपति समारा रास 123 संभवनाथ चरित 124 संवेग मात्रिका तारांकन 125 संदेश रास्क 126 सन्मति जिन चरित 127 सकुमाल स्वामी चरित श्रुति कीर्ति देवनंदी वीरगनी जिनप्रभ सूरी सम शून्य 131 वी शून्य श्रेणिक चरित्र जयमित्र रैधु तेजपाल सिद्धसेन सूरी जिनप्रभ सूरी वर्धमान सूरी शुभकीर्ति पद्म ईश्वरगनी देवसेन जिनप्रभ सूरी देवसेन नरसेन रैधु अमर कीर्ति 1274 वी शून्य महेश्वर सूरी अंबदेव सूर तेजपाल अब्दुल रहमान रैधु पुष्पभद्र पूर्णभद्र पेज नंबर 165 128 सुकुमाल चरित 129 सुगंध दशमी कथा 130 सुदर्शन चरित्र 131 सुभद्रा चरित्र 132 सुभाषित कुलक तारांकन 133, स्थूलभद्र फाग 134, हरिवंश पुराण 135, हरिवंश पुराण 136, हरिवंश पुराण तारांकन 137, सिद्धहेम शब्दानुशासन श्रीधर 1, नयनंदिन 1120, अभयगुनी सम 1161, जिनभद्र जिनपद मसूरी 1257, स्वयंभू और त्रिभुवन रैधु। श्रुति कीर्ति संकलित अपभ्रंश छंद हेमचंद्र जिनप्रभ सूरी 138, ज्ञान प्रकाश कुलक। यद्यपि उपर्युक्त ग्रंथ सूची पूर्ण नहीं है, फिर भी उसे अपभ्रंश साहित्य की व्याप्ति का कुछ आभास हो सकता है। इतने संधि कुलक चुपई आराधना रास चांच फाग स्तुति स्तोत्र कथा चरित पुराण आदि प्रकार के काव्यों में मानव जीवन और जगत की अनेक भावनाओं और विचारों को वाणी मिली है। यदि एक ओर इसमें जैन मुनियों के चिंतन का चिंतामणि है, तो दूसरी ओर बौद्ध सिद्धों की सहज साधना की सिद्धि भी है। यदि एक ओर धार्मिक आदर्शों का व्याख्यान है, तो दूसरी ओर लोक जीवन से उत्पन्न होने वाले ऐहिक रस का राग रंजित अनुकथन है। यदि यह साहित्य नाना शलाका पुरुषों के उदात्त जीवन चरित से संपन्न है, तो सामान्य वणिक पुत्रों के दुख सुख की कहानी से भी परिपूर्ण है। तीर्थंकरों की भवोच्छ्वसित स्तुतियों अनुभव भरी सूक्तियों रहस्यमय अनुभूतियों वैभव विलास की झांकियों आदि के साथ ही उन्मुक्त वन्य जीवन की शौर्य स्नेहसिक्त गाथाओं के विविध चित्रों में अपभ्रंश साहित्य की विशाल चित्रशाला सुशोभित है। स्वयंभू जैसे महाकवु के हाथों इसका बीजारोपण हुआ। पुष्पदंत धनपाल हरिभद्र जोइंदु रामसिंह देवसेन कनकामा हेमचंद्र सोमप्रभ जिनप्रभ जिनदत्त जिनपद्म विनयचंद्र राजशेखर शालिभद्र अब्दुल रहमान सरह और कान्ह जैसी प्रतिभाओं ने इसे प्रतिष्ठित किया, और अंतिम दिनों में भी इस साहित्य को यश कीर्ति और रैधु जैसे सर्वतोमुखी प्रतिभा वाले महाकवियों का संबल प्राप्त हुआ। ये सूची मुख्यतः प्रो शून्य हरि दामोदर वेलणकर द्वारा संपादित जिन रत्नकोश खंड 1 1944 में तैयार की गई है। विशेष विवरण के लिए उक्त कोश देखना उचित होगा। कुछ पुस्तकों के नाम अनेकांत से भी जोड़े गए हैं। तारकांकित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पेज नंबर 166। ऐसे महाकवियों और इतने महाकाव्यों तथा गीतकाव्यों के इस साहित्य का जो 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक सुदूर दक्षिण को छोड़कर शेष संपूर्ण भारतवर्ष के सामान्य लोक तथा शिक्षित मंडली के हृदय की वाणी थी, भारतीय साहित्य में कितना महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है, ये सहज ही अनुमेय है। अस्तु एक एक करके अपभ्रंश साहित्य के विभिन्न अंगों का अध्ययन करना चाहिए। पुराण साहित्य ब्राह्मणों की तरह जैनों का भी अपना पुराण साहित्य है। सामान्यतः दिगंबर जैनों के धार्मिक साहित्य के चार भाग किए जाते हैं, प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में तीर्थंकर आदि पुरुषोत्तमों का चरित्र वर्णन किया जाता है, और यही महापुराण है। इस तरह महापुराण अथवा पुराण साहित्य दिगंबर मत के इसी प्रथमानुयोग की एक शाखा है, जिसमें तीर्थंकरों चक्रवर्तियों बलदेवों वासुदेवों और प्रतिवासुदेवों आदि 63 शलाका पुरुषों के जन्म जन्मांतर की जीवन गाथाओं को लेकर विशाल साहित्य की सृष्टि की गई है। भारतीय साहित्य में पौराणिक रचनाओं का एक विशेष युग दिखाई पड़ता है, जब ब्राह्मण बौद्ध और जैन सभी मतवाले अपने अपने ढंग से बहुत बड़े पैमाने पर पुराणों की रचनाएं करते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि सामान्य जनसमूह तक शास्त्र और आगमों की विचारधारा को लोकप्रिय तथा बोधगम्य ढंग से पहुंचाने के लिए पुराण साहित्य का आविर्भाव हुआ। कहीं कहीं इन ब्राह्मण बौद्ध और जैन पुराणों में एक ही तथा एक से ही महापुरुषों की जीवन गाथाएं मिलती हैं, फिर भी उनके अपने धार्मिक आग्रहों ने उन गाथाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर डाला है। जैनों ने अपने पुराण संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं में लिखे हैं। तीर्थंकरों में ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ तथा महावीर के जीवन को लेकर अपभ्रंश में काफी रचनाएं की गई हैं। चक्रवर्तियों में भी यशोधर, नागकुमार, करकंडू आदि राजाओं पर कई काव्य लिखे गए हैं। इन सबके अतिरिक्त रामकथा और कृष्ण कथा को भी जैन कवियों ने अपने ढंग से भाषा बद्ध किया है। पौराणिक गाथाओं की जानकारी के लिए अपभ्रंश में सबसे बड़ा ग्रंथ पुष्पदंत का महापुराण अथवा तीसठी महापुरस गुणालंकार है, जिसमें 24 तीर्थंकरों, 12 चक्रवर्तियों, 9 बलदेवों, 9 नारायणों और 9 प्रतिनारायणों का जीवन चरित काव्यात्मक ढंग से वर्णित किया गया है। महापुराण दो भागों में विभाजित है, आदिपुराण और उत्तरपुराण। आदि पुराण में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का विस्तृत जीवन चरित 80 संधियों में वर्णित है और उत्तर पुराण में शेष 23 तीर्थंकरों तथा उनके समकालीन पुरुषों का जीवन चरित्र 42 संधियों में लिखा गया है। उत्तर पुराण का ही एक अंश हरिवंश पुराण, जिसमें कृष्ण की कथा दी हुई है। इसके अतिरिक्त राम कथा भी उत्तर पुराण का ही है। पेज नंबर 167 एक अंग है। जैनों द्वारा लिखे हुए अपभ्रंश के पुराण साहित्य में हिंदी साहित्य की दृष्टि से राम काव्य और कृष्ण काव्य का परिचय विशेष महत्वपूर्ण है। राम काव्य स्वयंभू। अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि स्वयंभू 8वीं शताब्दी ईस्वी हैं और अपभ्रंश के वाल्मीकि भी हैं। स्वयंभू उत्तर के रहने वाले थे, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ दिनों के बाद वे अपने संरक्षक रिया धनंजय के साथ दक्षिण के राष्ट्रकूट में चले गए। स्वयंभू को काव्य और पांडित्य उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। उनके पिता मारुतिदेव भी उन्हीं के शब्दों में कवि थे। स्वयंभू के व्यक्तिगत जीवन के विषय में केवल इतना ही मालूम हो सका है कि वे जैन मुनि नहीं बल्कि उपासक मात्र थे। स्वयं उन्हीं के अनुसार उनके दो पत्नियां थीं। काव्य कला में दक्ष होने के साथ ही स्वयंभू छंदःशास्त्र और व्याकरण में भी निष्णात थे। उनके लिखे हुए 4 ग्रंथ बताए जाते हैं। 1 पौमचर्यु पद्मचरित अथवा रामचरित, 2 ऋठनेमी चर्यु अरिष्टनेमी चरित या हरिवंश पुराण, 3 पंचमी चर्यु नागकुमार चरित, 4 स्वयंभू छंद। इन चारों ग्रंथों में जिसके लिए स्वयंभू की ख्याति है वह है उनका प्रथम काव्य पौमचर्यु 1 अथवा रामायण। 5 कांड और 83 संधियों वाला यह विशाल महाकाव्य अपभ्रंश का आदि काव्य है। अपनी रामायण के कांडों का विभाजन करते समय वाल्मीकि को सामने रखते हुए भी स्वयंभू ने अपनी रुचि से थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। जैसे पहले कांड का नाम उन्होंने बालकांड न रखकर विद्याधर कांड रखा है और अरण्य तथा किष्किंधा कांड को एकदम निकाल दिया है, शेष कांडों के नाम वाल्मीकिवत हैं। स्वयंभू की रामायण में रामचरित का वास्तविक आरंभ अयोध्या कांड से होता है। अपने महाकाव्य का आरंभ स्वयंभू ने बड़ी ही उदात्त भूमिका के साथ किया है, जिसमें कवि के नम्र आत्मा निवेदन के बावजूद उसके अधिक आत्मविश्वास का आभास मिलता है। काव्यारंभ की पुरानी परंपरा का पालन करते हुए आरंभ में स्वयंभू ने पंडित से निवेदन किया है कि मेरे समान कुकवि कोई दूसरा न होगा, न तो मैं कुछ व्याकरण जानता हूँ और न वृत्ति सूत्र का व्याख्यान ही कर सकता हूँ, न मैंने 5 महाकाव्यों को सुना है और न पिंगल प्रस्तार आदि छंद लक्षण ही जानता हूँ। 1 श्री मधुसूदन मोदी ने अपभ्रंश पाठावली प्री शून्य स्वयंभू को चतुर्मुख स्वयंभू लिखा है, लेकिन प्रेमी जी जैन सा शून्य इति शून्य 370 73 वेलनकर स्व शून्य क्षम शून्य भूमिका प्री शून्य 71 74 रा शून्य ए शून्य सो शून्य ज शून्य बम्बई जिल्द 2 1935 और हीरालाल जैन ने नागपुर यूनिवर्सिटी जर्नल दिस 035 सप्रमाण चतुर्मुख और स्वयंभू को दो भिन्न भिन्न कवि बतलाया है। पेज नंबर 168 भामा दंडी के अलंकार शास्त्र से भी मैं परिचित नहीं हूँ, फिर भी मैं काव्य रचना का व्यवसाय छोड़ने में असमर्थ हूँ। उद्धरण, लेकिन यह नम्रता कोरी नम्रता अथवा परंपरा पालन नहीं है। ये सारा कथन उस निर्भीक घोषणा की पृष्ठभूमि है जिसमें कवि स्पष्ट शब्दों में कहता है, जिन लोगों के लिए अपने काव्य की रचना कर रहा हूँ उनके लिए इतनी पंडिताई की जरूरत नहीं है। कवि की विशेषता तो देखिए, सामान भास दुदुडु मा विहडऊ छुडु आगम ज्युति किम्पी घडऊ छुडु हुंती सुहास्य वेयनाय गामल भास परिहरनाय, वह सामान्य भाषा को छोड़ने में असमर्थ है। गामेल भास को त्याग कर कुछ आगम युक्ति गढ़ने में उसे उत्साह नहीं है, और इस आगम युक्ति गढ़ने में भी कितना व्यंग है। स्वयंभू खेद के साथ कहते हैं कि यदि कोई सज्जन मेरे इस अबुद्धि प्रदर्शन पर रोष प्रकट करे तो उस खल की हथुथलियु लेने के सिवा और क्या रास्ता है। कितना सीधा है ये बांकपन। स्वयंभू को अपनी रचना साधारण लोगों तक पहुंचानी है और इसके लिए आवश्यक है साधारण लोगों की भाषा का माध्यम। इस महान उद्देश्य के लिए वे सारा व्याकरण अलंकार शास्त्र और पिंगल शास्त्र निछावर करने के लिए तैयार हैं। महान उद्देश्य ही कवि को जबरदस्त आत्मा विश्वास देता है। लोक सुख में ही स्वयंभू को आत्मा सुख है, और इसी आत्मा सुख के लिए उन्होंने अपनी रामायण रची पुनु अप्यनु पाडीन रामायण कावे। उद्धरण, रामकथा कहते समय स्वयंभू के सामने सदैव यही उद्देश्य रहा। राम के रूप में उन्होंने न तो किसी महान आदर्श चरित्र की सृष्टि की और न उसमें अलौकिकता कोई इंद्रजाल खड़ा किया। राम के रूप में उन्होंने किसी राजा के सुख वैभव का लालसा वर्णन करने में भी अपनी शक्ति नहीं लगाए। राम के यथार्थ मानव चरित्र को इस जैन कवि ने जैसा अनुभव किया वैसा बिना किसी लाग लपेट के सामने रख दिया। न राम के दोषों पर पर्दा डालना और न गुणों को अत्यधिक उजागर करना। स्वयंभू के राम वाल्मीकि के राम की ही तरह अपनी संपूर्ण मानवीय दुर्बलताओं और मानवीय शक्ति के प्रतिनिधि बनकर आते हैं। एक ओर यदि वे दैवी विपत्तियों के विरुद्ध पौरुष के प्रतिमान हैं, तो दूसरी ओर शक्तिहत लक्ष्मण के मुमूर्ष शरीर पर असहाय साधारण आदमी की तरह बिलखने वाले करुणा विगलित नवनीत हैं। यदि वे कर्म फल की सीमा में निरंतर कार्यरत रहने वाले कर्मवीर हैं, तो कर्म श्रृंखला के बंधन में कराहते हुए जीवन संध्या बिताने वाले निर्वाणोन्मुख पथिक भी हैं, जो नारी पेज नंबर 169 के वियोग में संपूर्ण सृष्टि को अपने आंसुओं से गीला कर देता है और समुन्दर पार करके रावण जैसे दुर्दमनीय राजा से संघर्ष करता है, यही पुरुष उस नारी के शरण में आने पर उसके सतीता का उपहास करता है और निष्करुण भाव से उसे अग्नि को सौंप देता है। स्वयंभू ने राम के चरित्र और व्यक्तित्व के इन दोनों पक्षों का बड़ा ही ओजस्वी चित्रण किया है। नारी के प्रति पुरुष मात्र का दृष्टिकोण उस युग में और आज भी कैसा था, ये अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में राम के व्यवहार द्वारा स्वयंभू ने भली भांति प्रकट कर दिया है। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर सीता कौशल नगरी में लाई जाती हैं। उनके शुभागमन का एक और भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार, इस विरोध के द्वारा स्वयंभू ने प्रसंग को अत्यंत मार्मिक और प्रभावशाली बना दिया है। ये है सीता के शुभागमन का वातावरण पुक विमाने चडियर अनुराए परिमिय विजाहर संघाए कौशल अन्यरी पराई जावही दिनमनी गऊ अत्थ वनहोतावही जत्थहो प्ययमेन निववासीय तव उववनहो मज्झे आवासीय कहवी विघन भान अन्हे उगऊ अहि मुहु सज्जन लोउ समागौ दिन्नै तरह मंगलु घोसियु पट्टनु गिर्जिजु पर्योसियु सिय पैठ निवट वरासने सासन देवय जामजेन सासने परमेश्री पम समागमे भति निहौलिय हाल हरेन सिय पक्खहो दिवसे पहिल्ले चंद लेह न सायरेन सीता पुष्पक विमान पर चढ़कर अनुराग से आईं विद्याधरों का समूह उन्हें घेरे हुए था। कौशल नगरी में जब वह पहुंची तो दिनमणि अस्ताचल को जा रहे थे, जो रानी इतने सम्मान से बुलाई गई थी और स्वयं इतने अनुराग से आई थी। उसके साथ राजधानी में क्या बर्ताव किया जाता है कि उसे राजमहल में जगह नहीं दी जाती। जगह कहाँ दी जाती है कि राजा के उपवन में। क्यों? क्योंकि वह इस समय प्रियतम द्वारा निर्वासित है। संध्या संधि वेला कही गई है। दिन भर के थके मांदे शाम को मिलते हैं, लेकिन 12 वर्षों के बाद जब सीता आती हैं तो उन्हें रात भर प्रतीक्षा के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है। पति राजमहल में है और पत्नी उपवन में। पुरुष पेज नंबर 170 राजसुख भोग रहा है और नारी आसमान के तारे गिन रही है। आखिर विहान होता है, नभ में भानु उगते हैं, सज्जन लोग आते हैं, मंगल घोष करने वाले तूर्य बजाए जाते हैं, मंगल के लिए उतना नहीं जितना निरवशेष पट्टन को परितोषित करने के लिए कि हाँ सीता की अग्नि परीक्षा होगी। ऐसे ही समय सीता प्रवेश करती हैं, वरासन पर बैठती हैं। एक ही उपमा में कवि सीता की संपूर्ण गरिमा और स्थिरता को व्यक्त कर देता है। बैठी हुई आग से ऐसी लग रही हैं जैसे जिनशासन पर शासन देवता। और तब इतने लंबे व्यवधान के बाद इस प्रथम समागम में परमेश्वरी सीता सहसा हलधर राम द्वारा देखी जाती है। ये दृष्टिपात कैसा है, जैसा सागर सित पक्ष के प्रथम दिन चंद्रलेखा को देखे। इसके बाद कंथी तनी कंती पेखे पिनु पबनी पोम नाहु विहसे पिनु जई वी कुलग्या गिरवज्जउ महिलऊ होंती असुद निलज्जऊ दस दाविय कादख विखिवउ कुडल मयु वद्धि अवलेवऊ बाहिर धिठऊ गुण परिहीनु केहसय खड्डू न जंती तिहीनु पाठ गणंतीनी कुल मैलंतऊ तिहुअने अयस पदहु वजंतऊ अंगु समोदेवी धिधिक्कार हो वयण नियंती केम भत्तार हो। उद्धरण कहाँ तो सागर का प्रथमा की चंद्रलेखा की और निहारना कांता की कांति को देखना और कहाँ उनका वह विहसना और फिर विहसकर धिक्कार भरी ये बातें कहना। महिलाएं अशुद्ध होती हैं, निर्लज होती हैं, मलिनमती होती हैं, बहिर्दृष्टा होने पर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं और इस तरह हीन हो जाती हैं। त्रिभुवन में अपने कुल को मलिन करके अयश फैलाती हैं। भला ऐसी नारी का मुख उसका भतार कैसे देखे। उद्धरण पता नहीं इतना कहने से पहले राम ने सीता का वह मुख कैसे देखा था। अब राम के इस श्याम चरित्र की पृष्ठभूमि में स्वयंभू की सीता का सित चित्र देखिए। सिय अनभिय सैट गवे बलेवी पबोली गग्गर सदे पुरिस निहीम होंती गुणवत वी तियहे अनपत तिज जंती मृंथवी पेज नंबर 171 खड्डू लक्कड्डू सलिल वहंति हे पौरानी हे कुलग्गयो रयनायरु खारी देंतऊ तो थक्कई अण निहे सानु अण केन वी जनेन गणिज जई गंगा निहे तम जी पहाय जर ससी स कलनकु तही जी पई निम्मल कालऊ मेहु तही जी तदी उज्जल उवलु ह पुज्जू अण केन वी छिपर तही पदिम चंदनेन वी लिप पई धुगजर पाव पंखु जई लागर कमल माल पुन जिन्हो वलग गई दीवउ होई सहावे कालऊ वट्टी सिहे मंदिज जई एवडउ न नारे ही मरने वी वेली अण मैलई तरुवरु एह पढ़ कवना बोल पारंभिय सई वडाय मई अजू समुभ्य तुहु पेखंतऊ अच्छु विसत्थऊ। दहौ जलनु जय दहिवी समस्थौ की किजयी आनी दिव्य जैन विसुझो महुमन हो। जेह कन्य लोली दाहोत्तर अच्छमी मजझे हुआसन हो। राम की वैसी मलिन वाणी सुनकर भी सीता संयत रहीं। उनके मन में तनिक भी भय न आया। सतीत्व के गर्व से उन्होंने सिर ऊंचा रखा और अपने पहले ही वाक्य से राम को बे दिया। पुरुष गुणवान होकर भी निहीन होते हैं, मरती हुई स्त्री का भी विश्वास नहीं करते। वे उस रत्नाकर की तरह हैं जो क्षार देकर भी नदियों से नहीं विरमता। आगे नर नारी का अंतर बतलाते हुए सीता कहती हैं कि दोनों में इतना ही अंतर है कि मरने पर भी वल्ली तरुवर को नहीं छोड़ती। आलऊ अंतरु। अंत में सीता कहती हैं कि तुम्हारे मुख से ऐसा शब्द कैसा निकला। आज मैं सतीत्व की पताका फहराऊंगी, तुम विश्वस्त होकर देखते रहो। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन विशुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का किया क्या होगा। स्वयंभू की सीता के ये वाक्य वाल्मीकि की सीता की याद दिला देते हैं। इतना हो जाने पर कवि का विशेष दृष्टिकोण उभर आता है और ऐसी महिमामयी नारी को कर्म फल विश्वासी जैन कवि नीचे उतार कर रख देता है। आग से तपकर असली सीता तो शायद खरे सोने की तरह और भी कांतिमयी होकर निकली होंगी, लेकिन स्वयंभू की सीता कर्म फल की विभूति रमाए बाहर आई। खेद है कि जिस स्वर्ण प्रतिमा को कवि ने इतने परिश्रम से गढ़कर तैयार किया उसे अपने ही पेज नंबर 172 हाथों जलाकर क्षार कर दिया। कवि को क्या पता कि उसकी सृष्टि अग्नि प्रवेश से पहले जितनी ही तेजोमयी थी, उससे निकलने के बाद उतनी ही मलान भस्मावृत चिनगारी मात्र रह गई। राघव ने क्षमा याचना कर ली और भारतीयता की मूर्ति किंतु परित्यक्ता स्नेहशीला सीता देवी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, अहो राघव म जाही विसायहो नवी सऊ दोस अनजन संघायहो भव भव सही विनाश्य धम्महो सवू दोसु इव दुःखीय कम्महो। न तुम्हारा दोष है न जनसमूह का दोष, तो दुष्कृत कर्म का है और इस दोष से मुक्त होने का एकमात्र उपाय यही है कि ऐसा किया जाए जिससे फिर स्त्री योनि में जन्म न लेना पड़े। एम ही तेह करोमी पुनुरहो वई जेह अना होमी पवारे तियमई। बावजूद कर्मफल दर्शन के इस कथन में नारी हृदय की कितनी बड़ी वेदना छिपी है। नारी पर पुरुषों के अत्याचार की इतनी मार्मिक अनुभूति और क्या हो सकती है। यहीं से जैन कवि के जीवन दर्शन का शासन स्वीकार कर सीता जिन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। स्वयंभू की रामायण का पर्यवसान इसी शंभाव में होता है। यहीं पौमचर्यु की 83वीं संधि समाप्त होती है। ऐसी वास्तविक मानव मूर्तियां गढ़ने में वही कवि सफल होता है जिसे मानव मन के भावों और विकारों की सच्ची परख हो। स्वयंभू ऐसे ही संवेदनशील कवि थे जिन्हें विविध परिस्थितियों में पड़े हुए मनुष्य की मानसिक उथल पहचानने और फिर उसे पूरे भावावेश के साथ शब्दों में उतार देने की अद्भुत सिद्धि प्राप्त थी। राम की करुण कथा में ऐसे अनेक मार्मिक प्रसंग आते हैं जहां चरित्रों के साथ स्वयं कवि का और फिर कवि के साथ पाठकों का हृदय सीमा तोड़कर बह चलता है। आहत लक्ष्मण के लिए भरत का विलाप एक ऐसा ही मार्मिक प्रसंग है। ऐसे अवसर पर राम का विलाप तो बहुतों ने व्यक्त किया है, लेकिन भरत के हृदय की दशा भी काव्य का विषय हो सकती है, इसकी ओर स्वयंभू ने ध्यान दिया है। यह वही भरत हैं जो राम से वन में मिलने के लिए आ रहे थे तो लक्ष्मण ने शंकाकुल दृष्टि से देखा था और फिर उनसे लड़ने के लिए पूरी तैयारी की थी। ऐसे ही बंधु के लिए भरत इस प्रकार विलाप करते हैं, लभई रयनायरे रयन खान लभई कोयल कुले महुरवानी। पेज नंबर 173 लभई चंदनु सिरी मलय सिंगे लंभई सुधतनु जुवई अंगे लभड़ धनु विने धरा पवनु लभई कंचने पर्वये सवनु लभड़ पेसेन सामिये पसाओ लभई किए विने जनानुराव लभई सज्जने गुण दाने किति सियर असिवरे गुरु उले परम तिति लभई विसियरणे कलत प्रयुनु महकवे सुहासियु सुकई वेयुनु लभई उवयार मैहि सुमित्त महवे ही विलासिनी चारुचित लभई परतीरी महग्धु भंडु वरवेनु मूले वैलुज खंडु गए मोतियु सिंघल दीवे मणि वैराग्रहो वजपौरु आयई सवई लब्धंती जई नवर अन लभई भाईवरु संसार में तमाम चीजें सकती हैं लेकिन भाई नहीं मिल सकता। लक्ष्मण के गिर पड़ने पर भरत कहते हैं महु निवडियुसी दाहिनु पानी अर्थात मेरी तो दाहिनी भुजा ही टूट गई। आदिकवि वाल्मीकि की ही भांति स्वयंभू भी जीवन के करुण प्रसंगों के सच्चे पारखी थे। राम के वनगमन का प्रसंग ऐसा ही मार्मिक है जिसका वर्णन सभी कवियों ने अपने अपने ढंग से किया है किंतु स्वयंभू ने उसमें अनूठी मार्मिकता का परिचय दिया है। पुत्र वियोग के समय माता का विलाप स्वयंभू के शब्दों में सुनिए हा हा काय वो तू पी हलहर दस वर्ष दीव जग सुंदर पी विनु को पल्लके सुवैसई पी विनु को अत्थाने वैसई पी विनु को हय गयहूं चरेसी पह विनु को झिंदुएन रमेसी पी विनु रायलछी को मानी पी विनु को तंबोलु समानी पी विनु को पर वलु भुंजिजी पी विनु को मई सहारसई 212314 जन्नी सोचती है राम जब वन चले जाएंगे तो उनकी पनलग सूनी हो जाएगी अर्थात उदास हो जाएगी हाथी घोड़े पड़े रहेंगे लगाया हुआ पान धरा रह जाएगा राज लक्ष्मी अनाथ हो जाएगी। राम के न रहने पर भी ये वस्तुएं पर रह जाएंगी इनमें से एक एक को देखकर राम की याद आएगी। ऐसी दशा में इन वस्तुओं को वे किस प्रकार देखेंगी और देखकर भी हृदय धारण कैसे करेगी इन सीधी सादी बातों पेज नंबर 174 में कितनी गूढ़ गंभीर अनुभूति है। स्वयंभू की इन पंक्तियों में लोकगीत का सहज रस है। वन गमन की करुण प्रसंग श्रृंखला की पराकाष्ठा वह है जब महलों में रहने वाली राजवधु जानकी घर से बाहर चरण रखती है। उस समय स्वयंभू की कल्पना कितनी ऊंची उड़ान भरती है वह देखने योग्य है। जानकी अपने मंदिर से क्या निकली मानो हिमावान से गंगा निकल पड़ी छंद से गायत्री निकल पड़ी शब्द से विभक्ति निकल पड़ी। नी मंदिर हो विनिगय जानी न हिमवत हो गंग महानी न छंद हो निगय गायती न सद्द हो नीज्रिय विहत्ती 212316 भरत साही करुण विलाप रावण की मृत्यु पर विभीषण का भी है। अपने भाई को छोड़कर जो विभीषण राम से मिल गया उसके हृदय में रावण की मृत्यु के बाद आत्मा ग्लानि क्षोभ पश्चाताप आदि कितने प्रकार के भाव उठे होंगे। कवियों ने प्रायः विभीषण के उस हृदय की ओर ध्यान नहीं दिया है और स्वयंभू ने ऐसे ही समय विभीषण को अपनी कवि सुलभ सहानुभूति दी है। मूर्छित जैसे पड़े हुए रावण को विभीषण जब निहारता है तो अपने को पीटता है और फिर रावण के चरण पकड़कर रोता है हा भाय दुअनिदे मुत्तउ सिजे मुएवी की महेले सुत की अवहेरी करेवी थियु सीसे चदाव्य चलन तुम्हारा अच्छमी सुठम्मा हियउ हियउ फूट आलीगी भडारा अर्थात हे भाई ये दुनिंद्रा छोड़ो सेज छोड़कर जमीन पर क्यों सोए हो हमारी अवहेलना क्यों कर रहे हो ये लो मैं अपने सीस पर तुम्हारा चरण रख रहा हूँ हे भट्टारक तुम्हारे आलीगन से अथवा आलीगन के लिए हृदय फूट रहा है चित उन्मथित हो रहा है। और इसके बाद विभीषण कहता है कि यह तुम्हारा मरण अकेले एक व्यक्ति का मरण नहीं है बल्कि उससे कहीं अधिक बड़ी चीज है। तुहु अन जियुसी सयलु जियु हुयनु तुहु अन मुकसी मुयहु वंदिजनु तुहु पडियुसी अन पडियु पुर्द्रु मऊड अन भग्गु भग्गु कंध्रु दिटी अन नठ नठ लंकावरी वयन अन अंध्रट नठ मंदुअरी पेज नंबर 175 हारु अन तुटु तुटु तारायनु हिय अन भिन्नु बिन्नु गयनंगनु चक्कर अना धक्क धक्कर एकत्रु आओ अना खुट्टू खुट्रेनायरु जीव पणगट गऊ आसा पोटल तुहु अना सुतु सुतु महिमंडल सिय अनर आनी आनी जमुरी हरी वल क्रुद क्रुद न केसरी। उद्धरण: इस विलाप में दिवंगत का विश्वव्यापी प्रभाव ही नहीं प्रकट होता, बल्कि विलाप करने वाले भाई के हृदय का ममत्व भी झलक रहा है। मरा हुआ व्यक्ति जितना ही प्रभावशाली होता है, उसके लिए किया गया विलाप भी उतना ही मार्मिक होता है। उसके शक्ति, शौर्य, प्रताप, वैभव, गुण, धर्म से मिलती जुलती एक एक चीज को देखकर हृदय भर आता है। रावण धरती पर पड़ा हुआ है, उसका मुकुट एक ओर लुढ़क गया है, दृष्टि नष्ट हो गई है, हार टूटकर बिखर गया है, हृदय विदीर्ण है, मुंह से शब्द नहीं निकलते। इन सभी चीजों को एक एक करके विभीषण देखता है और उससे लगता है कि यह रावण का मुकुट भग्न नहीं हुआ है, गिरी कंदर भग्न हुआ है। ये दृष्टि नहीं हुई है, स्वयं लंकापुरी नष्ट हुई है। यह वचन नष्ट नहीं हुआ है, इस वचन को पान करने वाली मंदोदरी नष्ट हुई है। ये जो टूटकर बिखर गया है वह केवल मोतियों का हार नहीं है, आकाश के सभी तारे हैं और आह ये भेदा हुआ विशाल हृदय, ये रावण का हृदय नहीं विश्वव्यापी आकाश है। और इन सबके भीतर से यह जीव उड़ गया है, लेकिन वह जीव मात्र नहीं है, उसके साथ तो आशा की पोटली ही चली गई। एक दो आशा नहीं, आशाओं की पोटली, उसके साथ बहुतों की आशाएं चली गईं। ऐसे ही विलाप के बीच यह अद्भुत उपमा: तुम्हारी यह आयु नहीं खत्म हुई है, कभी न घटने वाला रत्नाकर समुद्र ही खत्म हो गया है। कहाँ आयु जैसी सूक्ष्म वस्तु और कहाँ समुद्र जैसी मूर्त उपमा। आकार की समता नहीं है, समता है उस गुण की, क्षय न होने की, और आयु समाप्त होने के लिए कितना जीवंत मुहावरा प्रयुक्त हुआ है, आयु अन खट्टू। लोक बोली के पारखी तुलसी ने भी जनता के कंठ से इस प्रयोग को सुना था और आयु खुटानी जैसा प्रयोग स्वयं भी किया है। ये संपूर्ण कथन कोरी अलंकार योजना नहीं है, ये हृदय का सहज प्रवाह है जिसमें न जाने कितने अलंकार अपने आप बह आते हैं और इस तरह लहरों में पिरोए हुए बहते रहते हैं कि विविक्त करना कठिन होता है। यदि स्वयंभू की अलंकार योजना ही देखनी हो तो उनकी उपमाओं की एकावली अन्यत्र देखिए। वे एक दो उपमा देकर तृप्त नहीं होते, पाठक के गले यदि उपमाओं की एक माला न पहना दी। पेज नंबर 176 तो वह स्वयंभू क्या। उपमाएं भी सभी तरह की परंपराभुक्त रूढ़ उपमाएं और एक से एक नई उपमाएं। गोदावरी का वर्णन करते हुए स्वयंभू कहते हैं: फेनावली बनकिय वल्यालंकिय न मही बहुहे तनिया, जल निहि भत्तारहो मोत्तिय हारहो वाह पसार्य दाहिनिया। गोदावरी क्या है? मानो वधु वसुधा की दाहिनी बांह है जो बनकिम फेना वलियों के वलय से अलंकृत है और जिसे वसुधा ने मोतियों के हार से सुशोभित अपने प्रिय पति जलनिधि की ओर फैला दिया है। इसी प्रकार वृक्षराजी की उपमा वे कुलवधु वसुधा की रोमराजी से देते हैं। कत्थवी जाना वेह रुख राइन न मही कुल बहुही रोम राइन। उपमाएं केवल उपमा के लिए नहीं दी गई हैं, कभी कभी उनके द्वारा सामान्य मानव जीवन की ओर मार्मिक संकेत भी किया गया है। समुद्रा का वर्णन करते करते स्वयंभू जब उसके आलाप पर पहुंचते हैं तो धीरे से कहते हैं: निधन आलाव वर अपमानु। उद्धरण: कवियों को समुन्दर से दूर रहने पर भी अक्सर उसका गर्जन ही सुनाई पड़ता है, लेकिन स्वयंभू को समुद्र का शोरगुल निर्धन व्यक्ति के कंठन की तरह अप्रमाण दिखाई पड़ता है। समुद्र के शोर का क्या प्रमाण है? कौन सुनने वाला है उसे? और जब सुनने वाला कोई नहीं है तो फिर वह शोर चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, उसका प्रमाण ही क्या? वह अपना रोना रोया करे, क्षोभ से गर्जा करे, लेकिन रत्नाकर समुद्र को निर्धन से उपमित करना भी कितना सांकेतिक है। निर्धन भी वस्तुतः रत्नाकर ही होता है, लेकिन उसके सभी रत्न तल में पड़े हुए हैं। समुद्र की गहराई को देखकर स्वयंभू को महाकाव्य की गहराई याद आती है। वे कहते हैं कि समुद्र महकव्ये निबंधु व सद्गिरु, ऐसे ही महाकवु के महाकाव्य को देखकर समुद्र की गहराई याद आती है। ऐसी उपमा आकस्मिक नहीं है। महाकाव्य की व्यापकता और गहराई के विषय में स्वयंभू इतने सतर्क थे कि अक्सर ऐसी प्राकृतिक वस्तुओं से महाकाव्य की उपमा देते हैं। पावस प्रसंग में जो मेघ जाल को फैलते देखकर उन्हें तुरंत सुकवि के काव्य की याद आ जाती है। पसरई सुखी कव्व जे मेघ जाल गयनागणे तवेही, इतनी व्यापकता और गहराई ऐसे ही कवि में आती है जो मानव जीवन के साथ ही प्रकृति के बीच भी रमा हो। मानव प्रकृति के चित्रकार स्वयंभू की तुलिका से एक जनपद की प्राकृतिक शोभा का भी चित्रण देखिए। मगध देश का कितना सीधा सादा चित्र है।